आज का प्रातः क्लास है 5/11/1966 शनिवार को रिकॉर्ड चला है। जले न क्यों परवाना, ये सभी गीत भक्ति के गाए हुए हैं। तो भक्ति के गीत होने के कारण आखिरी इनमें ये गीत भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि गीतों की भी समझने की दरकार तो नहीं है ना। जबकि गायन है बिल्कुल अच्छी तरह से कि बाप से एक सेकंड में वर्षा मिलता है। वो एक सेकंड किस समय की यादगार है। अभी तो 80 साल होने जा रहे, फिर एक सेकंड की बात कहाँ की है। वो अंतिम सेकंड जब आत्मा संपूर्णता की स्टेज को पहुंचेगी, पुरुषार्थ संपन्न होगा, उसी आखिरी सेकंड में बाप से एक सेकंड में वर्षा मिलता है। वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति का। मुक्ति अर्थात दुख दर्दों से मुक्ति, और जीवन मुक्ति माना जीवन भी रहे। और जीवन होते हुए दुख दर्दों से मुक्ति, अभी तो नहीं कहेंगे कि वो सेकंड आया हुआ है। अब ये तो जानते हैं कि वेद के बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, उस बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, वो बाप स्वयं भी तो जीवन मुक्त होना चाहिए। जीवन मुक्त माना ही जीवन में भी हो और दुख दर्दों से मुक्त हो। Thank you. तो क्या ये आत्माओं के बाप की बात है? आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल जीवन में आता है, जीवन अर्थात आत्मा और शरीर सहित आत्मा, सुप्रीम सोल को तो मुक्त होने की बात ही नहीं है। वो कभी जीवन बंध में आता है तो किस बाप से एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है? साहूकार बाप होगा तो साहूकारी का वर्षा देगा, मल्टी मिलियन आयर होगा तो मल्टी मिलियन का वर्षा देगा, यहाँ कौन से बाप की बात है? और बेहद के वर्षे की बात है या हद के वर्षे की बात है? एक जन्म की जीवन मुक्ति नहीं, बेहद की जीवन मुक्ति। जन्मों की जीवन मुक्ति, जहाँ दुख दर्द का नाम निशान नहीं होगा, तो वो कौन सा बाप है? है तो बेहद का बाप। क्राइस्ट आदि देवदारी धर्म पिताओं की तरह हद का बाप नहीं है, बल क्राइस्ट 200-250 करोड़ का बाप है, परंतु वो भी तो हद है ना, मनुष्य सृष्टि का बाप है। ये 500-700 करोड़ का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि तो कलयुग के अंत में ही सृष्टि पर मौजूद होगी ना, तो क्या कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में दोनों युगों के बीच कोई ऐसा एक सेकंड होता है जिस सेकंड में दोनों युगों का मेल हो? सेकंड कहो, घड़ी कहो, मास कहो, दिन कहो, कहा जाता होगा संबत 1-1-1, तो दिन भी होगा, मास भी होगा, वर्ष भी होगा, जब पुरुषों में अर्थात आत्माओं के बीच में उत्तम बना होगा, जीवन मुक्त बना होगा, एक सेकंड में ही बना होगा ना, किसका नाम गायन है? है जनक का नाम है। जन अर्थात जन्म का माने करने वाला। ऐसा जीवन मुक्ति का प्राप्त करने वाला और कराने वाला बाप है। जनक माने बाप। तुम सब सीताएं हो, एक है बाप जिसे राम बाप कहा जाता है। सीताएं गाई जाती हैं जीवन बंध में, राम कोई जीवन बंध में थोड़ी गाया जाता है, लेकिन राम जो जीवन बंध में गाया नहीं जाता है उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म कौन सा है? पहले तो जन्म लेगा ना, जन्म लेकर ही पुरुषार्थ करेगा ना। पुरुषार्थ संपन्न होने पर ही जनक नाम पड़ेगा। सारी मनुष्य सृष्टि का जनक जो गायन है, एक सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति मिली। और जीवन मुक्ति नई दुनिया की राजधानी में ही मिली होगी। यथा राजा तथा प्रजा भी होनी चाहिए। राजधानी स्थापन करने के लिए नई दुनिया की पाप कहते हैं आत्माओं का, कि मैं जब आता हूँ तो एक सेकंड में धक से राजधानी स्थापन कर देता हूँ। सर्वशक्तिवान गाया हुआ है ना, तो वो सेकंड जब कलयुग का अंत होता है, दुख दर्दों की दुनिया का अंत होता है, और एवरलास्टिंग सुखों की दुनिया का शुरुआत होता है, वो सेकंड भी बताया हुआ है। कौन सा सेकंड बताया? बताया है तुम बच्चों को, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो बच्चे भी नंबरवार हैं आत्मा रूपी। जिन आत्मा रूपी बच्चों में कोई बाप का बड़ा बच्चा भी होगा, आत्माओं के बाप का बड़ा बच्चा, वो ही परंपरा चली आती है दुनिया में कि जो भी राजाए हुए हैं उन्होंने अपने कौन से बच्चे को राजाई दी, बड़े बच्चे को राजाई दी। इसीलिए गीता में लिखा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वतः। तो दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब प्रकार से मेरा ही अनुगमन करते हैं, मेरे रास्ते पर ही चलते हैं। तो ये कहने वाला कौन सी आत्मा है? है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र मेरे रास्ते पर ही चलते हैं, जो रास्ता मैंने प्रशस्त किया है। अगर कहें निराकार बाप ने प्रशस्त किया, आत्माओं के बाप ने प्रशस्त किया, तो वो निराकार बाप से तो निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? है निराकार से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है, वो तो ज्ञान का अखूट भंडार है। ऐसा अखूट भंडार है जिस भंडार में से सारा ही भंडार निकाल लिया जाए तो भी संपूर्ण बचता है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ बच्चों को अपना सारा वर्षा देने के लिए, मैं अपने पास कुछ रखता ही नहीं हूँ, सब कुछ बच्चों को अर्पण कर देता हूँ। सच के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सारा अर्पण कर देता हूँ। क्योंकि मैं जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूँ, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं अपने पूर्व जन्मों की बातों को भूल जाती है, मैं तो नहीं भूलता, इसलिए मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत त्रिकालदर्शी होने का टाइटल मिला हुआ है। परंतु वो आत्माओं का बेहद का बाप कहता है कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाता हूँ। तो ज्ञान का भंडार लेने वाले बच्चों में कोई अव्वल नंबर का बच्चा होगा भी या नहीं होगा? है जो अव्वल नंबर का बच्चा है उसी का नाम भारत पड़ता है। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। ऐसे नहीं कि संगम युग के शूटिंग पीरियड में ही ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला, शूटिंग पीरियड में शूटिंग करेगा ज्ञान की रोशनी में लगे रहने के लिए तो ब्रॉड ड्रामे में नहीं करेगा। जो ब्रॉड ड्रामा में भी मनसा से वाचा से कर्मेंद्रियों के कर्म से ज्ञान युक्त होकर के कर्म करता है, वाचा चलाता है, संकल्प चलाता है, ब्राह्मण में उसका कोई नाम होगा पहला है? होगा या नहीं होगा? ज्ञान का सर्वोपरि ग्रंथ कौन सा है? जो गीता शास्त्र सर्वोपरि ग्रंथ है, वो गीत किसने गाया? भगवान ने गाया? गाया तो मुख से गाया या बिंदु रूप में स्थिर होकर गाया है? मुख से ही गाया होगा। ऐसे तो नहीं जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया, अल्लाह मियाँ निराकार है, अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, अल्लाह मियाँ ने आफ्ताब सूर्य बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया। कैसे बनाया? ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले जो कम कुलियों के ब्राह्मण हैं, वो भी कहते हैं कि मनुष्य शक्ति में आदि में पहला पत्ता कृष्ण का जन्म कैसे हुआ? तो कहते हैं परम धाम से आत्माएं स्टार आती हैं और नीचे आकर प्रिंस प्रिंसेस बन जाती है। अरे सृष्टि प्रक्रिया का कोई नियम है या नहीं है? है? सृष्टि की प्रक्रिया एक से आरंभ होती है सृष्टि में, या कम से कम दो चाहिए? तो ऐसे तो नहीं है कि एक निराकार भगवान अल्लाह मियाँ अकेले सृष्टि पैदा कर देता है। वो भी तो आकर कहता है कि मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो मेरे पास जो भंडार है ज्ञान का, उस ज्ञान के भंडार का बीज डालने के लिए मैं सर्वोत्तम धरणी चुनता हूँ। माता का चुनाव करता हूँ। पहली पहली वो मेरी रचना है। कौन है? नाम देते हैं ब्रह्मा। मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो पहले पहले अव्वल नंबर में कोई तो कोई मैं तो प्रवेश किया होगा। जिसमें प्रवेश करता हूँ उसी का नाम परम ब्रह्म पड़ता है। जो गाते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री ब्रह्मे गुरुवे नमः, मैं उसी परम ब्रह्म गुरु को नमस्कार करता हूँ, बुद्धि झुकाता हूँ। अर्थात बुद्धि अर्पण करता हूँ। उसके सन्मुख होकर मैं अपनी बुद्धि नहीं चलाता, मन मस्तक झुकाता हूँ। तो वो बाप भी आत्मलोक से जब नीचे आता है तो कोई को अपनी प्रेयसी बनाता है, मासूक बनाता है। सर्वशक्तिवान बाप भी किस पर फिदा होता है, है? मासूक पर फिदा होता है। और जिस पर भगवान फिदा होगा उस पर सारी दुनिया को फिदा होना पड़े या नहीं होना पड़े, इसीलिए झाड़ के चित्र में महामृत्यु के समय की बात दिखाई है। झाड़ के ऊपर कौन बैठा हुआ है? शंकर का आकारी रूप दिखाया गया है। शरीर है या नहीं है? है? जो आकारी रूप दिखाया है उसमें शरीर है या नहीं है? है? शरीर है परंतु सूक्ष्म शरीर है, ज्यादा शक्ति स्थूल में होती है या सूक्ष्म में होती है? तो वो सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता जो दूसरे धर्मों में भी गाया हुआ है, जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया, बड़े फरिश्ते का नाम देते हैं जब्राइल, बहुत जबरदस्त। उसको सुप्रीम सोल बाप जब इस सच्ची पर आते हैं तो साक्षात्कार से बनाए हुए पहले चित्र दूसरे चित्र में इंट्रोड्यूस करते हैं। ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता और शंकर महादेवता, वो महादेव है, देव है परंतु भगवान नहीं है। भगवान तो एक ही निराकार है, भगवान क्यों नहीं है? जब झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया गाते भी है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, माँ ऊंचा तेरा काम, तो ऊंचा और नीचा इस सृष्टि की बात है या जहाँ सृष्टि ही नहीं है आत्मलोक की बात है? सृष्टि की बात है। इस सृष्टि में कोई आत्मा है जो ऊंचते ऊंचे पार्टधारी है, जिसे कहते हैं मुख्य एक्टर, हीरो पार्टधारी। उस हीरो पार्टधारी को निराकार भगवान आकर के बड़े से बड़ा मीडिया बनाते हैं। किस बात का मीडिया? जो काम दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती, चाहे भले ही कितने बड़े बड़े नामी ग्रामी धर्म पिताएं क्यों न हुए हों, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जैसे क्यों न हुए हों, वो भी पुरानी दुनिया की परंपराओं को नहीं तोड़ पाते, नष्ट नहीं कर पाते। पुराने राज्यों को खत्म नहीं कर पाते। पुराने गुरुओं से टक्कर नहीं ले पाते। इसलिए वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले जाते, दूसरा जन्म ले लेते, राज्य स्थापन नहीं कर पाते, नई राजधानी स्थापन नहीं कर पाते। वो कार्य है पुरानेपन का विनाश, पुरानी दुनिया का विनाश, क्योंकि इसके लिए जो पुराने पुराने गद्दी मशीनें हैं उनसे टक्कर लेनी पड़ती है। इसलिए वो कोई से टक्कर नहीं लेते, लेकिन अपने धर्म की धारणाएं सिर्फ स्थापन करते हैं। तो ऐसा करने से क्या दुनिया में टक्कर होना बंद हो जाएगा? धर्म की धारणाओं का संघर्ष बंद हो जाएगा? बंद होता है, है? नहीं बंद होता, और ही जाती। द्वापर युग से द्वैतवाद बढ़ने से दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो धर्म, दो दो राज्य, वैमनस्य बढ़ता जाता है, संघर्ष बढ़ता जाता है, वाचा का भी, कर्म इंद्रियों का हिंसक युद्ध है, बढ़ता जाता है। क्योंकि तो पुरानेपन का तो खत्म किया, खलासा किया ही नहीं। तो ये काम आत्माओं का बाप अपने जिस मीडिया से कराते हैं उसका नाम देते हैं शंकर, परंतु शंकर नामधारी देहधारी तो है, देहधारी मनुष्य आत्माएं अपूर्ण होती है या संपूर्ण होती है? देहधारी जिन्हें की देह में बुद्धि धरी रहती है वो अपूर्ण है या संपूर्ण है? अपूर्ण है, तभी तो शंकर को याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। याद अपने से ऊंचे को करेगा या किसी और को करेगा? इसलिए जब नाम लेते हैं शिव का, सदा कल्याणकारी सदा शिव का नाम लेते हैं, तो उनके नाम के साथ बाद में एकमात्र देवता शंकर का ही नाम ऐड करते हैं। कोई और आत्मा का नाम नहीं जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि शिव का जो तीन मूर्तियों के द्वारा कराया हुआ कार्य है, उस कार्य में जो तीसरी मूर्ति विनाशकारी है, वो कार्य कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए सुप्रीम सोल बाप को पहले पहले उसी का आधार लेना पड़ता है, परम ब्रह्म का। तो जिसका आधार लिया वो हुआ साकार, जिसने आधार लिया वो हुआ निराकार और सदा निराकार, सदाशिव। उसकी निराकारी रूप बिंदी का ही नाम शिव है। तो एक निराकार एक साकार, तो इस साकारी दुनिया के हिसाब से प्रवृत्ति पक्की होती है, है? एक छोटा हो और एक बहुत बड़ा हो, हाथी की तरह दिल डोल वाला, एक चींटी की तरह सूक्ष्म बन गया, काटिया बन गया, तो जीवन मुक्ति जिसे कहा जाता है, जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति हो, सुखी ही सुख में रमण करे, ऐसा मेल हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए जिस तन में प्रवेश होता है, उस तन के द्वारा इस सच रूपी रंग मंच पर पहले पत्ते को तैयार करना, जन्म देना, प्रत्यक्ष करना जरूरी है। बाप का जन्म पहले, बच्चे का जन्म बाद में, लेकिन शिव बाप कहते हैं। यहाँ तो बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। क्या? बाप और बच्चा दोनों इकट्ठा पैदा होते हैं। सच रूपी रंगमंच की बात कहें, तो सच्ची का साकार बाप है राम बाप, एडम आदम जिसे कहा जाता है। और सच्ची का पहला पत्ता है कृष्ण बच्चा। इससे साबित होता है कि राम बाप बाप के रूप में संसार में एवर लास्टिंग रूप में जब प्रत्यक्ष होगा, तो बच्चा भी प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि साकार रूप में सुप्रीम सोल बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो पढ़ाई खास किस आत्मा के लिए पढ़ाते हैं? है? कृष्ण बच्चे के लिए पढ़ाते हैं। वो कृष्ण बच्चे की पढ़ाई पूरी हुई माना उसके बाद नंबरवार और पत्ते भी प्रत्यक्ष होने लगेंगे नए सृष्टि रूपी वृक्ष में। कब होंगे? टाइम कौन सा है? वही टाइम है जो बोला है कि तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तुम बच्चे माने कौन से कुल के बच्चे? सूर्यवंशी बच्चे। सूर्यवंशियों का है बाप सूर्य, उसके बाद कौन सा वंश आता है? चंद्रवंश। चंद्रवंशियों का बाप कौन है? चंद्र। तो पहले सूर्यवंशी बाप और फिर बेटा सच्चे रुक्मी रंगमंच पर पहला पत्ता, ये दो आत्माएं हैं जिनमें एक साकार सृष्टि पर मनुष्य सृष्टि का बाप का पार्ट बजाता है और फिर उसकी पहली रचना। कोई भी बाप की पहली रचना कौन होती है? माता। किसको बनाता माता है? अरे त्रिमूर्ति में बाप कौन और माता कौन? ब्रह्मा माता। तो पहले पत्ते को माता बनाया, माता के द्वारा ही वर्षा देगा। कि बाप खुद वर्षा देता है, हैं? माँ को मीडिया बनाता है, माँ के द्वारा बच्चे का जन्म होता है। तो जो माँ ब्रह्मा रूपी आत्मा, ब्रह्मा और प्रकृष्ण वाली आत्मा, ये दो साथी हैं सच रूपी रंगमंच पर। वो कंबाइंड पार्ट बजाते हैं संगम में। क्या नाम देते हैं? बाप दादा। दादा क्यों? क्योंकि षष्ठ रूपी रंगमंच पर जो भी रचना है उस रचना के बीच में बड़ा है, इसलिए दादा है। साकार मनुष्य सृष्टि में एक मनुष्य आत्मा दादा है और एक मनुष्य आत्मा बाप है। कौन है? राम वाली आत्मा बाप, जो बोला है मुरली में, राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, और वही बच्चा बाप का बच्चा रंगमंच पर पार्टदारी है। पहला पार्ट माता का बजाता है ब्रह्मा, उससे ब्रह्मा मुख से क्या निकला? जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्म मुख से शास्त्रों ने गाया हुआ है, वेदवाणी निकली, मुख से वेदवाणी निकली। वेद का अर्थ ही है ज्ञान, वेद ज्ञान का भंडार है। लेकिन आज दुनिया में कोई वेद पढ़ता है? अर्थ सुनता समझाता है? वेदों को कोई सुनाता है? शूटिंग कहाँ होती है? ये रिहर्सल कहाँ होती है? कब है? अरे रुद्रमाला के बीज रूप आत्माओं में ही शूटिंग पहले पहले होती है। तो रुद्रमाला के मन के जो पहली पहली वेदवाणी है, श्रीमद् भगवत गीता पहला ग्रंथ है संसार का, तो यहाँ है बैठे हुए में जो प्रैक्टिकल में निकली वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से, उस तो मुरली को रोज पढ़ता हो, कोई पढ़ता है? हैं? कोई नहीं पढ़ता, कोई सुनता नहीं। उस मुरली का पाठ कोई नहीं करता। हाँ, वेदों की जो व्याख्याएं हुई हैं, उन व्याख्याओं को सुनते हैं। जैसे गीता की अनेक टीकाएं हुई है, अनेकों मनुष्य गुरुओं ने टीकाएं की है, वो व्याख्याओं को पढ़ते हैं। परंतु भगवान बाप कहते हैं मनुष्यों ने जो गीता लिखी वो गीता झूठी गीता हो गई, और मैं जो मुख से सुनाता हूँ, ओरली सुनाता हूँ, वो सच्ची गीता है। कोई भी धर्म पिताएं आए हैं, जैसे मोहम्मद ने कुरान लिखी क्या? क्राइस्ट ने बाइबल लिखी क्या? बुद्ध ने कोई पुस्तक लिखी क्या? या ओरली अपने धर्म की धारणाओं का ज्ञान दिया? बाद वाले जो परवर्ती हुए शिष्य, वो शिष्य धर्म पिताओं के मुकाबले कम ज्ञानवान थे, बराबर ज्ञानवान थे या ज्यादा ज्ञानवान थे? हैं? कम ज्ञानवान थे। तो उनकी टीका झूठी होगी या सच्ची होगी? हैं? झूठी होगी। ऐसे ही परमपिता परमात्मा जिस बीज रूप आत्मा में आकर के ज्ञान का बीज डालते हैं, वो मनुष्य शक्ति का बाप क्या? परिवार में जो भी भांति होते हैं, माँ से लेकर के छोटे बड़े बच्चों तक, उनको जन्म देने वाला कौन? मूल रूप में कौन है? माँ। माँ पहले है या बाप पहले? बोलते हैं मुर्गी पहले या अंडा पहले? तो क्या जवाब देना चाहिए? न मुर्गी पहले
ना अंडा पहले, मुर्गा पहले। तो ऐसे ही है मनुष्य सृष्टि के जिस बीज रूप बाप ने आदम में आत्माओं का बाप आकर के ज्ञान का बीज डालते हैं, वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। और वो बाप जो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, उसको पहली रचना के रूप में चुनता है। कौन सी युग में है? कौन सी युग में? संगम में चुनता है। तो जिसको माता के रूप में चुना, उसके द्वारा ही श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान मिलेगा ना, जिसे मुरली कहा जाता है, जो पहली पहली वेद वाणी कही जाती है, दुनिया का पहले से पहला धर्म ग्रंथ कहा जाता है। परंतु मनुष्य इस बात को नहीं जानते। तो जो वेद है, उन वेदों में भी, वेदों को भी शास्त्र ही कहेंगे ना, उन शास्त्रों में भी पहला शास्त्र कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता। चैतन्य में गीता शास्त्र है, वो गीता शास्त्र भगवान का मुख से गाया हुआ है, लिखा हुआ? लिखा हुआ नहीं है, लिखते मनुष्य है। जैसे कोई भी धर्म पिता है, ऐसे ही उन धर्म पिताओं में भी जो मुख्य धर्म पिता है, मुख्य धर्म का पिता, प्राचीन से प्राचीन धर्म का पिता, वो कौन है? धर्म का नाम क्या है? सत्य सनातन देवी देवता धर्म है। देवी देवता कौन बनाता है? अरे भगवान बनाते हैं। देवी देवता भगवान बनाता है या कोई देवी देवता देवता बनाता है? भगवान देवी देवता नरसिंह नारायण बनाते हैं। तो जो भगवान नरसिंह नारायण बनाता है, वो भगवान भी प्रवृत्ति मार्ग में प्रत्यक्ष होता है या निवृत्ति में प्रत्यक्ष होता है? है प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष होता है। उसकी प्रवृत्ति किसके साथ है? है परम ब्रह्म के साथ उसकी प्रवृत्ति है। परम ब्रह्म के साथ जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता जम लेता है। कब? जब वो मनुष्य जिसका शरीर रूपी रथ है, मुकर्रर रूप से भगवान इस सृष्टि पर धारण करता है, वो मनुष्य आत्मा, मनुष्य आत्माओं का बाप पुरुषार्थ में संपन्न हो जाता है। कैसा संपन्न? इंद्रियातीत बन जाता है, इंद्रियों से भी अतीत चला जाता है। जैसे गीता में कहा है इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रियां बड़ी प्रबल है, इंद्रियेभ्य परम मन, इंद्रियों से भी जो मन है वो प्रबल है, मनसस्तु पराबुद्धि, मन से भी प्रबल बुद्धि है। मनुष्यों के अंदर है जो मन है, चलाए मन चंचल, उसको भी कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि। और मनुष्यों की जो बुद्धि है वो ढेर के ढेर मनुष्य बुद्धिमान है, उन बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल। तो वो सुप्रीम सोल मनुष्य सृष्टि में जो भी बुद्धिमान नर अर्जुन के रूप में चुना गया, क्या गीता ज्ञान देने के लिए मुख्य रूप से किसको चुना है? अरे गीता के ऊपर चित्र दिखाया जाता है, चित्र चरित्र की यादगार है ना। तो भगवान ने किसको ज्ञान सुनाया? खास अर्जुन को सुनाया। जरूर नाम पड़ा है अर्जुन, ज्ञान का अर्जन किया है सबसे जाते, अब्बल नंबर का नाम हो जाता है, चित्र बन जाता है। सब भाग्य का अर्जन किया होगा ज्ञान के आधार पर। तो सत भाग्य, सत माने सच्चा, भाग्य माने भाग्य, सच्चा भाग्य 100% सद्भाग्य कहा जाएगा या 99% वो भी सद्भाग्य कहा जाएगा है? 100% को ही सद्भाग्य कहेंगे। सत्य गुरु, गुरु माने बारी, सौ परसेंट को भारी कहेंगे, अगर 99% है वजन में तो वजन कम है, सर्वोपरि वजनधारी नहीं है। ऐसे ही जो सद्भाग्य का अर्जन करने वाला अर्जुन है, तो सच्चा भाग्य लेने वाला सत्य जिसे कहा जाता है, वो सत्य एक होता है या नंबरवार अनेक भी होते हैं? है सत्य तो एक ही होता है, इसलिए गॉड को कहा जाता है गॉड इज वन। क्यों है? इस दुनिया में सुप्रीम सोल गॉड फादर के रूप में जो प्रत्यक्ष होता है, सदगुरु के रूप में जो प्रत्यक्ष होता है, सिख लोग गाते हैं एक सदगुरु निराकार, तो बाकी गुरु एक सत्य गुरु सच्चा गुरु, तो बाकी गुरु झूठे गुरु हो गए। परसेंटेज में तो जरूर झूठे, तो झूठे ही कहेंगे ना। तो जिस अर्जुन को भगवान बाप चुनते हैं सदभाग्य बनाने के लिए, उसका शास्त्रों में गायन है ज्ञान की गंगा कौन लाया? भागीरथ लाया, भाग्यशाली रथ। और गंगा कहां से उतरी? पाताल में नीचे से उतरी या ऊपर से आई है? ऊपर से आई। अब उन्होंने तो पानी की गंगा समझ ली है, पहाड़ों से आई, पानी की गंगा की तो बात ही नहीं है। क्या पानी की गंगा की बात है? नहीं। कौन सी गंगा की बात है? ज्ञान युक्त गंगा की बात है। और ज्ञान युक्त जो गंगा नदी है उसका कनेक्शन अगर ज्ञान सागर से है तो वो सच्ची नदी है, पतित पावनी है। सागर से कनेक्शन नहीं, सागर से संबंध ही नहीं जोड़ा। संबंध कैसे जोड़े जाते हैं? इंद्रियों से ही संबंध जोड़े जाते हैं। तो संबंध जोड़ा गया तब नाम पड़ा है गंगाधर। धर माने धारण करने वाला। किसको धारण कर लिया? ज्ञान गंगा को धारण कर लिया। ऐसी नदी को धारण कर लिया जो ऊंची स्टेज से आती है और नीचे की ओर जाती है। पानी की गति क्या होती है? पानी नीचे जाता है या ऊपर जाता है? पानी नीचे जाता है। ये भी ज्ञान का जल है। ज्ञान का जल ऊंची स्टेज से आता है। बेसिक ब्राह्मणों के बीच में भी कोई गंगे दादी थी, शास्त्रों में बहुत होशियार थी। एडवांस में भी कोई गंगा बीज रूप होगी या नहीं होगी? वो गंगा भी यही पार्ट बजाती है कि एडवांस ज्ञान की जब शुरुआत होती है तो एडवांस ज्ञान लेने वाली कोई कन्या है जो शंकर की जटाओं में कन्या के रूप में दिखाई जाती है, माता के रूप में नहीं। वो कन्या एडवांस ज्ञान पहले पहले धारण करती है। तो नदियों के बीच में सबसे सात्विक नदी हुई या नहीं हुई? वो नदी ऊंची स्टेज से आती है और ऊंची स्टेज में जाती है। तो गीत बनाई दिए, राम तेरी गंगा मैली। क्यों क्यों मैली? शंकर की जटाओं में थी तो किसके संग के रंग में थी? है ऊंचे पे ऊंचे पाठधारी के संग के रंग में थी। ऊंची स्टेज में जो सदैव रहता है उसके संग के रंग में थी या नीचों के संग के रंग में थी? तो भारत की नदियों की ये बात है। ऊंची स्टेज से आती है, पवित्र मानी जाती है और फिर नीचे की गति होने के कारण तो नीची नीची स्टेज में बहती है तो कचरा मिल जाता है, नदी नाला बन जाती है। तब सवाल पैदा होता है गंगा की सफाई का, क्या गंदी हो गई तब सफाई की बात या पवित्र है तब सफाई की बात? गंदी होती है तो सफाई का अभियान चलता है। यही बात है वेद में भी, गंगा शंकर की जटाओं से निकली, पहले पहले गंगा निकली
है?
पहले पहले गंगा निकली या जगदम्बा निकली? जगदम्बा बाप की बेटी है या नहीं है? हैं? है? तो पहले कौन निकली? अगर गंगा निकली तो गंगा जगत की अम्बा होनी चाहिए, नहीं तो? अगर जगदम्बा पहले निकली तो जगदम्बा होनी चाहिए। कौन पहले निकली? जगदम्बा पहले निकली, लेकिन जो जगदम्बा की यादगार है वो छोटी छोटी मूर्तियों के रूप में यादगार है या बड़ी मूर्तियों के रूप में यादगार है? मंदिर, छोटा मंदिर बनाते हैं, छोटी मूर्ति बनाते हैं। और लक्ष्मीनारायण के मंदिर बड़े बड़े बनाते हैं, भव्य मूर्ति भी बड़ी बनाते हैं, क्या कारण है? है? है, सेवा की बात है। जिसने बड़ा काम किया उसके यादगार मंदिर भी बड़े और भव्य बनाए जाते हैं, और जिसने छोटा काम किया उसके मंदिर भी छोटे बनाए जाते हैं, मूर्ति भी छोटी बनाई जाती है। जैसे बुद्ध की मूर्ति बड़ी बनाते हैं, पांडव बड़े बड़े बनाते हैं, छत जितने ऊंचे, हनुमान गोदी बड़ा बनाते हैं, शंकर की मूर्ति भी मूर्ति बड़ी बनाते हैं, छोटी बड़ी बड़ी बनाते हैं। इससे क्या साबित होता है कि उन आत्माओं ने बड़ा काम किया है, इसलिए बड़ा रूप बड़ा मंदिर बनाते हैं। तो गंगा ने जो ज्यादा सेवा की है इसलिए गंगा पतित पावनी गाई जाती है। कहते हैं सर के ऊपर सवार होती है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है सत्व प्रधान स्टेज में, बच्चा तो सत्व प्रधान स्टेज में ही होता है, बहुत प्यारा बच्चा होता है, तो क्या करते हैं बाप? बच्चे को प्यार में आकर के सर पर उठा लेते हैं। लोग कहते हैं इसको तुमने सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है, तो जगदम्बा को क्यों नहीं सर पर चढ़ाया? जगदम्बा तो पहला जन्म लेती है, गंगा पहले जन्म तो नहीं लेती, क्योंकि जगदम्बा जो पहला जन्म लेती है वो बचपन का रूप है। क्या? और गंगा जब नौजवान होती है, समझदार होती है, उस समय बेसिक ज्ञान और एडवांस ज्ञान लेती, तो ज्ञान की गहराइयां कौन समझेगा? समझदार समझेगा या बच्चा उम्र में समझेगा? समझदार रूप में समझेगा। गंगा जब एडवांस में आती है तो समझू के रूप में जगत की कन्याओं के बीच सबसे ज्यादा गहराई में शुरुआत का आरंभिक सतो प्रधान ज्ञान लेती है, क्योंकि दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से गुजरती है, ज्ञान भी चार अवस्थाओं से गुजरता है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, कोई भी अपने जीवन में देख सकता है कि हम जब सतो प्रधान समय में ज्ञान में आरंभ में आए थे तब ज्यादा खुशी थी या बाद में ज्यादा खुशी रहती है, है? जब ज्ञान में आए थे तो बहुत खुशी थी। जैसे दुनिया में बच्चे बहुत सतो प्रधान होते हैं, बच्चे बच्चों की आत्मा जब बड़ी उम्र की हो जाती है तो बचपन को याद करती है। हम बड़े सुखी थे माँ बाप की गोद में, तो गीत बनाई दिए हैं, बड़े आलू था जब अपू आ रहे थे हम तुम, लेकिन सच्चाई है कभी जो भाव भंजन में हमें भर करके गीत गाता है उसमें सच्चाई होती है। तो भक्ति मार्ग में जो गीत हैं, भक्ति मार्ग भी सतो प्रधान होता है, बाद में तमो प्रधान होता है। ब्रह्मा बाबा भी मुख से जो गीता ज्ञान मुरली सुनाते थे मीडिया बनकर, वो मुरली गीतों से क्यों शुरुआत करते थे? है जैसे आज की वाणी गीत से ही शुरुआत होती है, तो भाव भंगिया में बैठ करके गीत बनाने वाले गीत गाते हैं, उनमें भी जो पुराने गीत हैं उनमें जास्ती सात्य कथा होती है। जैसे बाबा कहते हैं उपत्यास सबसे जास्ती गिराने वाली चीज है, लेकिन उपन्यास जो लिखे गए हिंदी में या कोई भाषा में तो उनमें भी कोई पहला पहला उपन्यास लिखा गया होगा या नहीं? है लिखा गया, पता है कौन सा उपन्यास पहले लिखा गया? है चंद्रकांता संतति। जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे कि चंद्रकांता संतति में जो नौगढ़ की बात आई है, नौरतनगढ़, विजयगढ़ की बात आई है, विजयमाला का गढ़, गढ़ माने किला, और शिवदत्त की बात आई है, विष पीता था, ये सारी बातें जो पहले पहले उपन्यासकार हिंदी वाले ने लिखी वो सात्विक स्टेज में उपन्यास लिखा था या आज की तामसी स्टेज में लिखा गया था, इसलिए उसमें इस सृष्टि के आरंभ काल की सच्चाई भरी हुई है। तो दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, बाद में तमो प्रधान बनती है। नदियों में भी पतित पावनी नदी सतो प्रधान गंगा गाई हुई है, सच्चाई में ऐसी रिहर्सल हुई है ना तो गंगा का गायन है, फिर गंगा ही अंत में तामसी बन जाती है। तो गीत गाते हैं राम तेरी गंगा मेली। वो गीत गाने वाले ने जो गीत लिखा है राम तेरी गंगा मैली, वो भी भाव भंगिया में लिखा है या बिना भाव के लिखा है? भाव के लिखा है। तो बताया कि जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से ही मिलता है, गंगा आदि नदियों से नहीं मिलता है, क्योंकि गंगा आदि नदियां भी चार अवस्थाओं से पसार होती है और बाप चार अवस्थाओं से पसार होता है, है? कि सदाशिव है, सदाशिव है। चलो, जो सदाशिव कहा जाता है वो सचरूपी रंगमंच पर सदा कहा जाता है, सदाकाल अल्पकाल या परमधाम की बात है। सदाकाल माने 5000 वर्ष का काल, अल्पकाल माने थोड़ा। तो सदाकाल जो सदाशिव कहा जाता है वो एक आत्मा के लिए ही कहा जाता है कि कोई दूसरी आत्मा भी है? जिसका गीता में जिक्र है कि दो प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और दूसरी है अक्षर, जो कभी क्षरित नहीं होती, पतित नहीं होती। मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली और मनुष्य सृष्टि से परे रहने वाली, परमधाम में रहने वाली जो भी आत्माएं हैं, उनमें एक है अक्षर और बाकी सब है क्षर। लेकिन इस मनुष्य सृष्टि में एक तीसरी प्रकार की और भी आत्मा है, जिसको गीता में बोला गया है परमात्मा नाम से कही जाती है। क्या कहते हैं? परम पिता परमात्मा शिव। कभी ऐसे कहते हैं परमात्मा परम पिता शिव? कहते हैं, कहते हैं शिव शंकर। कभी ऐसे कहते हैं शंकर शिव। क्यों है? है जो पावरफुल है उसका नाम पहले और उसके मुकाबले जो कम पावरफुल है, नेक्स्ट टू गॉड है, उसको कहा गया परमात्मा। माना परम है तो किसके बीच में परम है? आत्माओं के बीच में परम पाटीदारी वो तो शिव है, लेकिन मनुष्य आत्माओं के बीच में परम पाटीदारी, हीरो पाटीदारी वो कौन है? है तो जो प्रजापिता है, 500-700 करोड़ का पिता है, 500-700 करोड़ उसे अपने पिता के रूप में महामृत्यु के समय स्वीकार कर लेते हैं और याद भी करते हैं, जिसकी याद में षष्ठ रूपी मनुष्य षष्ठ रूपी वृक्ष पर बैठे हुए उस परमात्मा को याद करते हैं जो परम ब्रह्म के रूप में गाया हुआ है। उसकी याद में मन मना भव हो जाते हैं। किसकी याद में? मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाज। किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा? शिव ने कहा। शिव को मन होता है, वो तो वह सोचता है। मन का काम है सोच विचार करना। तो कौन वो आत्मा है सर्वोपरि मनुष्य सृष्टि में, जिसका मन सबसे जास्ती चलाए, मन सबसे जास्ती प्रबल, इतना प्रबल कि कलयुग के अंत में बैल बनकर उसके ऊपर सवार हो जाता है। क्या अभी के पुरुषार्थ के हिसाब से क्या कहें? बैल शंकर के ऊपर सवार है या शंकर बैल के ऊपर सवार है? बैल कहो, घोड़ा कहो, मनरूपी घोड़ा कहा जाता है, परंतु जब पुरुषार्थी के बीच में जो अब्बलम्बर पुरुषार्थी है, कैसा अर्थी? पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला आत्मा, अब्बल नंबर पुरुषार्थी मनुष्य आत्मा, जब संपूर्ण पुरुषार्थ की स्टेज पर पहुंचता है तो मन रूपी घोड़े को कंट्रोल कर लेता है। कैसे कंट्रोल करता है वो भी मुरली में बताया। क्या बताया? है हाई जंप लगाता है और बैल पर या घोड़े पर सवार हो जाते हैं। घोड़े पर कैसे सवार हुआ जाता है? हाई जंप लगाते हैं और घोड़े पर सवार हो जाते हैं। तो ये अंतिम क्षण की बात है। क्या अंतिम क्षण कहो, अंतिम सेकंड कहो, जिस अंतिम सेकंड में पुरुषार्थी मनुष्य आत्मा अपने मन रूपी घोड़े को कंट्रोल कर लेती है। कैसा कंट्रोल? कि जो भी मन के द्वारा संकल्प चलेगा वो श्रीमत के अनुकूल ही चलेगा, प्रतिकूल एक भी संकल्प नहीं चलेगा। उसके लिए डायरेक्शन है, एक विशेष डायरेक्शन है। क्या? इच्छा मात्रम अविद्या। इस संसार की कोई भी इच्छा नहीं, एक भी इच्छा इंटरफियर करती है तो फिर समझो कि वो सेकंड नहीं आया है। कौन सा सेकंड? जो गाया हुआ है एक सेकंड में जनक को जीवन मुक्ति, और वो सेकंड हर आत्मा का अलग अलग टाइम में नुदा हुआ है या सबका एक ही टाइम में नुदा हुआ है? अलग अलग टाइम में नुदा हुआ है। बाकी ये पक्का है कि वेद का बाप प्रवृत्ति मार्ग में रहकर नंबरवार बच्चों को एक सेकंड में ही जीवन मुक्ति देते हैं, नई दुनिया की जीवन मुक्ति, नई दुनिया की राजधानी में देते हैं। वो बच्चा उसी सेकंड से नई दुनिया की राजधानी में अपने को अनुभव करने लगता है। ऐसे नहीं आज नई दुनिया की राजधानी में अनुभव करे, खुशी में आ जाए और कल नीचे गिर जाए, वो निश्चय अनिश्चय का चक्र अभी चलता है। जबकि मनुष्य आत्माओं के बाप का पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है, जब मनुष्य आत्माओं के बाप का पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है तो एक के पावन बनने से सब पावन बनने लग पड़ते हैं और एक के पतित बनने से सब पतित बनने लग पड़ते हैं। तो बताया बच्चों को समझाया गया है कि जीवन मुक्ति अर्थात इस दुख धाम से मुक्त, इस आयरन एज कलयुगी पुरानी दुनिया से मुक्त अथवा अनेक प्रकार के दुखों से मुक्त और अल्पकाल के लिए नहीं है, लंबे काल के लिए। बल्कि मनुष्य कहते तो सभी हैं कि भ्रष्टाचारी इंद्रियां, श्रेष्टाचारी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, भ्रष्टाचारी इंद्रियां, भ्रष्ट इंद्रियां, भ्रष्टाचारी पने से मुक्त हो जाना है। तो कैसे होंगे है? भ्रष्टाचारी इंद्रियों में सबसे पावरफुल इंद्रिय कौन सी है? काम इंद्रिय। तो काम इंद्रिय के लिए गाया हुआ है, काम जीते जगत जीत। तो जगत को जीतने का सवाल है, तो जीत और हार बिना युद्ध के होती है, है? युद्ध किए बगैर जगत जीत बन जाएंगे, छोटे राज्य के राजा बन जाएंगे। कोई भी युद्ध जीतने के बाद ही राज्य मिलता है, तो गाया हुआ है इंद्र जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। तो कैसे जीतेंगे है? याद से युद्ध नहीं करेंगे हैं? बिना युद्ध किए? हाँ, याद में भी युद्ध होता है, याद करने बैठते हैं और कौन इंटरफेयर कर देती है? माया किसे कहा जाता है? बोलो बोलो बोलो। पांच विकारों को माया कहा जाता है, उनमें भी मुख्य विकार काम विकार। जो काम विकार के संकल्प हैं, जो मनुष्य और स्त्री पुरुष के रूप में इतने हावी हो जाते हैं कि मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ते, अंतिम समय में मृत्यु के टाइम पर स्त्री याद करती है किसकी? उसकी याद करती है, तो पुरुष की कामेंद्रिय याद आ जाती है। जिससे सुख लिया है वो सुख याद आएगा कि नहीं? याद आता है। तो स्त्री को कौन सा जन्म मिलता? पुरुष का जन्म मिल जाता है, अंतमते सुगते। ऐसे ही पुरुष का होता है, जीवन भर जिस इंद्रिय से सुख लिया है हमारे इंद्रियों से ही सुख दुख लिया जाता है कि नहीं? देवताएं बिना इंद्रियों के सुख लेते हैं है? अरे राधा कृष्ण जो कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है, राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबती है और किसी में नहीं डूबती, जीवन भर नहीं डूबती, जन्म जन्मांतर नहीं डूबती, तो आंखें इंद्रिया नहीं है, है? इंद्रियों के द्वारा सुख लिया, क्योंकि वो ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान से सुख होता है और अज्ञान से दुख होता है। जो अज्ञान में इंद्रियां हैं वो भ्रष्ट इंद्रियां हैं।
भ्रष्ट इंद्रियों में मुख्य इंद्रियां काम इंद्रिय है।
तो जिस रास्ते से अनुगमन करते हुए हम इतने जन्म मरण के चक्र में आते हैं कि जन्म जन्मांतर भक्ति करते हुए भी उस जन्म मरण के चक्र से आत्मा छूट ही नहीं पाती, तो बाप बताते हैं। क्या बताते हैं? कर्मयोगी बनो। क्या? कर्मेंद्रियों से कर्म करो। सन्यासियों के मिसल कर्मधारा को छोड़ना नहीं है, परंतु मेरे को याद करो, ये प्रैक्टिस करो। क्या? आंखों से देखेंगे, आंखें बंद करके याद नहीं करेंगे। आंखों से क्या देखा जाता है, है? अरे आंखों से क्या देखा जाता है? कुछ ऐसा देखा जाता है जो एक बार देख लिया तो कोई को जीवन भर याद आता है, भूलता ही नहीं। क्या देखा जाता है? अरे कुछ अनुभव नहीं किया, कुछ देखा नहीं जाता। अरे रूप देखा जाता है कि नहीं है? जो रूप देखा जाता है वो याद आता है। ये इंद्रियों का विषय है रूप, खास ज्ञान इंद्रियों का विषय। सुंदरता बहुत आकर्षित करती है, कुरूपता आकर्षित नहीं करती। और जो सुंदरता मिलती है जीवन में वो इस जन्म के पुरुषार्थ से मिल सकती है, है? कि खूब पुरुषार्थ करें, खूब क्रीम लगाएं, खूब पाउडर लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, तो सुंदरता कायम रहेगी, बुढ़े होंगे कि नहीं? तो जो असली सुंदरता है वो किस आधार पर मिलती है, है? अरे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर मिलती है ना। पूर्व जन्मों में सुंदरता की कदर की है तो इस जन्म में भी सुंदर रूप स्वरूप मिलेगा। कदर नहीं की है तो बोड़ा रूप मिल जाता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति है जो जन्म जन्मांतर चलती है, और वो कर्म अकर्म विकर्म की गति दुनिया में कोई नहीं समझा सकता सिवाय एक जन्म मरण से न्यारे परमपिता परमात्मा के। परमपिता के साथ परमात्मा नाम क्यों लगा दिया? परमपिता तो ठीक है, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, आत्माओं के बीच में, मनुष्य आत्माओं के बीच में नहीं, आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी। जो सबका पिता है उसका कोई पिता नहीं, वो परम पिता शब्द क्यों पहले लगाया है? क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है। क्या? ज्ञान ही सर्वोपरि है। द्रव्यदानात् ज्ञान दानम विशिष्यते, रुपया पैसा मकान जमीन जायदाद बच्चे बच्चियां ये अर्पण करना बड़ी बात नहीं है। क्या अर्पण करना बड़ी बात है? ज्ञान दान करना, मनुष्य गुरुओं को द्वारा दिया हुआ ज्ञान नहीं। किसके द्वारा दिया हुआ ज्ञान? जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत गाया हुआ है उस आत्मा का दिया हुआ ज्ञान। और ऊंचे से ऊंचा भगवंत इस मनुष्य शक्ति में आकर के ऊंचे से ऊंचे मनुष्य पाठधारी के द्वारा जो ज्ञान देता है उस ज्ञान दाता को सामने प्रत्यक्ष कर देना, वो है बड़े से बड़ा ज्ञान। क्या माना? बेसिक नॉलेज में या ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेसिक ज्ञान लेने वाले बच्चे, बच्चा बुद्धि बच्चे, आत्मा बिंदु, आत्मा का बाप परमात्मा बिंदु, ये सर्वोपरि बाप का परिचय नहीं है। क्यों? अरे है? है? आत्मा ज्योति बिंदु, आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु, ये परमपिता ज्योति बिंदु शिव का ज्ञान देना, परिचय देना, ये सर्वोपरि ज्ञान नहीं है? है या नहीं? तो फिर सर्वोपरि ज्ञान क्या है? है? हाँ, वो सुप्रीम सोल बाप कौन से मुकर्रर रथ में आकर के इस सृष्टि को, पतित सृष्टि को पावन सृष्टि बनाता है, पुरानी दुनिया को नई पावन दुनिया बनाता है, उस मीडिया का ज्ञान देना। तो बच्चा बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान लेने वाले समझते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा, सच्ची का पहला पत्ता कृष्ण, उसी का परिचय देना सर्वोपरि ज्ञान है। सर्वोपरि ज्ञान है? अगर वो ही सर्वोपरि ज्ञान है, दादा लेखराज ब्रह्मा का परिचय देना, तो फिर है ज्ञान से सदगति होती है। क्या ब्रह्मा बाबा की सदगति हुई है? सदगति हुई या भूत प्रेत की गति हुई? भारत में भूत प्रेतों की पूजा होती है या देवताओं की, भगवान की पूजा होती है? दूसरे धर्मों में, दूसरे धर्म में फरिश्तों की पूजा होती है, भूत प्रेतों की पूजा होती है? वो भगवान के साकार रूप को जानते ही नहीं। तो यही कारण है कि दादा लेखराज ब्रह्मा संपूर्ण ज्ञानी नहीं थे, क्योंकि उनको अव्वल नंबर जो रचयिता है, जो साकार होना चाहिए, उस साकार रचयिता का परिचय नहीं हुआ। हुआ नहीं हुआ, कोई कारण रहा होगा। क्या कारण हुआ जो नहीं हुआ? बिना कारण के तो कोई कार्य नहीं होता। क्या कारण हुआ है? हाँ, बच्चा बुद्धि तो कारण था कि ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का सही अर्थ ज्ञान की बीज रूप अवस्था में मनुष्य श्रेष्ठ वृक्ष का जो बीज है उसके द्वारा दिया गया। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप था और जिसको वो ज्ञान बुद्धि में अटूट बैठ गया। क्या ज्ञान? कि मैं मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता हूं। किसको बैठ गया? दादा लेखराज ब्रह्मा को। उन्हीं को क्यों बैठा? दूसरों को क्यों नहीं बैठा? क्योंकि उनको अनुभव हुआ प्रैक्टिकल में, दूसरों को ये प्रैक्टिकल अनुभव नहीं हुआ, इसलिए उनको ये ज्ञान बैठ गया कि मैं मनुष्य शक्ति का पहना पत्ता हूं। खुशी आ गई। और जब बीज रूप बाप ने उनको ये ज्ञान दिया, उस समय दादा लेखराज ब्रह्मा का वो बेहद का भागीदार भी था और हद का भागीदार भी था। दोनों ही हद के रत्नों के व्यापारी थे और बेहद के रत्नों के भी व्यापारी थे, लेकिन जो मीडिया बना बीज रूप में ज्ञान देने का, वो ड्रामा प्लान अनुसार अंतिम जन्म में सीढ़ी के नीचे कौन दिखाया है? है सीढ़ी के नीचे पड़ा हुआ कौन दिखाया है? राम वाली आत्मा धराशायी है। भले धराशायी है फिर भी जो सर के नीचे ग्रंथ रखा हुआ है उसमें क्या नाम लिखा है? गीता। उसकी बुद्धि में अंतिम जन्म में भी वो गीता ज्ञान समाया हुआ था, इसलिए आदि में ज्ञान यज्ञ के आदि में वो ही संस्कृति की गीता के अर्थ बताता था। जो सृष्टि के आदि में थे वो ही सृष्टि के अंत में गीता के अर्थ बताए जाते हैं। और यज्ञ के आदि में जो है, आदि सो अंत, यज्ञ के अंत में भी क्या होगा? सारे संसार में आवाज कब निकलेगी? गीता की मनुष्य द्वारा बनाई हुई, देहधारी मनुष्यों द्वारा बनाई हुई झूठी गीताओं से आवाज निकलती है कि गीता का भगवान आया हुआ है गीता ज्ञान सुनाने, या स्वयं भगवान के द्वारा आवाज निकलती है, है? जाते तो है, जय कै समझे कभी कै समझे रवि। जो श्रीमद् भगवत गीता रूपी कविता है, गीत है, श्लोक है, वो तो किसने रचे है? गीता में ही लिखा हुआ है व्यास प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से मिले, नाम पड़ा व्यास, विमाने विशेष रूप से आसमाने बैठ गया, इस बात के लिए बैठ गया है। अरे कोई खास कारण से बैठ गया है? किस लिए बैठ गया? अरे व्यास गद्दी किस लिए प्रसिद्ध है? व्यास के उत्तर उत्तर पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी शिष्य हुए वो शिष्य व्यास की गद्दी पर बैठे तो उसे गद्दी का नाम पड़ा व्यास गद्दी। किस लिए बैठे है? गीता के रोम रोम को डिक्लेयर करने के लिए बैठे, व्याख्या करने के लिए बैठे। तो पहला कवि कौन था? व्यास। वो गीता के मर्म को जानता था। उसके बाद के जितने कवि हुए हैं वो उतनी गहराई से गीता के मर्म को समझेंगे, क्योंकि मनुष्य सृष्टि पीढ़ी दर पीढ़ी ज्यादा विकारी बनती जाती है या निर्विकारी बनती जाती है? है? ज्यादा विकारी बुद्धि बनती जाती है। तो अर्थ भी कैसे होते गए गीता के? विकारी अर्थ होते गए, विकारी व्याख्याएं होती गई। अंत में जो आदमी सो ही अंत में वही व्यास वाली आत्मा भागीदार के रूप में निमित्त बनती है और मुकर्रर रूप रथ के रूप में निमित्त बन करके स्वयं भगवान निराकार उस गीता का सही अर्थ बताता है। पहले अर्थ बताता है या गीता को सार रूप में बीज रूप में प्रत्यक्ष करता है। पहले क्या करता है? है बीज रूप में प्रत्यक्ष करता है। जैसे बच्चा है, बाप माता में बीज डालता है। शुरुआत कहाँ से हुई? बाप से या माता से? बाप से शुरुआत हुई बीज बोने की। वो बीज धीरे धीरे भ्रूण का रूप धारण करता है। भ्रूण से हाथ पांव वाला बच्चा निर्जीव तैयार होता है। उसमें पहले आत्मा नहीं होती, तो चार पांच महीने के बाद क्या होता है? आत्मा प्रवेश करती है। जब आत्मा प्रवेश करती है तो पहले पहले किसको अनुभव होता है? माता को अनुभव होता है। माता भी अब्बल नंबर होनी चाहिए या दो नंबर की माता होनी चाहिए, थर्ड क्लास माता हो तो भी चल जाएगा है? तो सच्ची रूपी रंगमंचर में अब्बल नंबर माता कौन है? अरे है वो तो बीज हो गया साकार में, वो तो साकार में ज्ञान का बीज हो गया। माता कौन हुई? जो प्रैक्टिकल रूप में उस बीज को साकार रूप देती है। उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो बच्चा चुर्र पुर्र करता है, माँ को अनुभव होता है। वो कौन माता है जो अंदर ही अंदर अनुभव कर लेती है कि बच्चा आ गया? कौन? छोटी माँ अनुभव कर लेती है। पिछली अव्यक्तवाणी में 5 दिसंबर की बात शायद सुनी होगी, सुनी या नहीं सुनी है, जिसमें बताया गया बाप सुप्रीम सोल और बाप के पहले बच्चे बाबा, बाप का बड़ा बच्चा दादा, आत्मिक रूप में बाप और बच्चा दोनों का मेल 5 दिसंबर को हुआ था, 18 जनवरी को नहीं। 18 जनवरी का स्मृति दिवस असली स्मृति दिवस नहीं है। असली स्मृति दिवस कौन सा है? है 5 दिसंबर। पास्ट की बात बताई, और जब वो मेल हुआ, मिलन हुआ आत्मिक रूप में, बिंदु रूप बनी हुई आत्माएं, पहली पहली बिंदु रूप बनी हुई दो आत्माएं बाप और बच्चा, तब उसके मिलन को देखने वाले भी थे। उस अव्यक्तवाणी में कोई बच्चों की तरफ इशारा भी किया है। उस स्मृति दिवस को याद करके वो बच्चे रो रहे थे। तुम रोने वालों के बीच कोई बच्चा होगा बल्लभर, जो उस स्मृति को याद करके अंदर ही अंदर प्यार के आंसू बहाता, आत्मा रूपी बच्चा कौन हो सकता है? उसके बुद्धि रूपी पेट में ये बात आती है, जिसके लिए 66 की मुरली में 10 साल पहले ही घोषणा कर दी थी। जो मनुष्य शक्ति के बीज हैं लक्ष्मी नारायण, उनका जन्म कब हुआ है? 66 में बताया, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। मन 76 की तरफ इशारा किया उस मनुष्य सृष्टि के बाप की प्रत्यक्षता के लिए। बच्चा मनुष्य सृष्टि का बाप रूप बच्चा वो सन 76 से प्रत्यक्ष होता है। परंतु एडवांस में चलने वाले जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उन्होंने क्या समझ लिया कि आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष होता है या मनुष्यों का बाप प्रत्यक्ष होता है? या साकार निराकार दोनों एक साथ प्रत्यक्ष हो गए, क्या समझा है? कुछ पक्का पक्का समझा? अरे क्या समझा है? नहीं, किसी की बुद्धि में ये पक्का नहीं बैठा कि मनुष्य सृष्टि का बाप ही प्रत्यक्ष हुआ। अपने से पूछो, जब एडवांस में आए थे तो ये पता आया बुद्धि में कि मनुष्य सृष्टि का बाप राम ही प्रत्यक्ष हुआ है, आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ है? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी बड़े मजे से मनाई लिया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। और हम बच्चे भी बोलते चले आ रहे हैं 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन कौन सा बाप प्रत्यक्ष हुआ ये तो एग्जैक्ट किसी ने नहीं जाना। जब जाना ही नहीं असलियत को, तो निश्चय सदा काल के लिए बरकरार रहेगा या निश्चय डोल सकता है? तो डोलता है या नहीं डोलता है? तो 76 में वो माँ को पहले पहले बुद्ध रूपी पेट में अनुभव होता है, क्या कि वो नारायण वाली आत्मा का प्रत्यक्षता मेरे अंदर होती है पहले पहले, दूसरी कोई मनुष्य आत्मा इस बात को नहीं पहचानती। लेकिन 5-6 महीने के बाद जो बच्चे की आत्मा माता के बुद्धि रूपी पेट में आ जाती है जानकारी में, वो क्या पक्का जन्म है? उसे जन्म कहा जाता है, है? हाँ, तो वास्तव में 76 में परमपिता परमात्मा का जन्म दिवस नहीं है, वो शिवरात्रि की यादगार नहीं है, महाशिवरात्रि, अज्ञान अंधकार की रात्रि तो कहेंगे, लेकिन ब्रह्मा के बच्चों के बीच में जो ब्रह्मा की औलाद बनते हैं, नंबरवार 9 कुलियों के ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्षता की बात है या बाहर की दुनिया में प्रत्यक्षता की बात है? जो ब्राह्मणों की दुनिया सारी की सारी अंधकार में डूब गई, अज्ञान अंधकार में डूबी या नहीं डूबी है? ज्ञान सूर्य को पहचाना? नहीं पहचाना। तो जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है 76, वो बाप और बच्चे का इकट्ठा जन्म नहीं है जो मुरली में बोला, क्या बाप अकेला जन्म लेता है या साथ साथ बच्चों का भी जन्म गाया हुआ है? है साथ साथ जन्म। तो वो कब की बात है? हैं? है तो 40 साल के बाद ही वो टाइम, वो सेकंड आता है जब बाप और बच्चे और उनके संगठन रूपी राजधानी तो दुनिया में पहले पहले प्रत्यक्ष होती है, जहां से संबत एक 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 की शुरुआत कहें, पूरी राजधानी नहीं कहें, क्या छोटी राजधानी का रूप प्रत्यक्ष होता है। उस राजधानी में इस मनुष्य सृष्टि का बाप भी प्रत्यक्ष होता है और इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता भी प्रत्यक्ष होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप भी प्रत्यक्ष है और पहला पत्ता रूपी बच्चा भी प्रत्यक्ष माना, और राम वाली आत्मा भी, और राम वाली आत्मा में बुद्धि में सर में जटाओं में दिखाने दिखाया जाने वाला, सर माथे पर रखा जाने वाला चंद्रमा रूपी बच्चा जो पहले पुरुषार्थी रूप में अधूरा है, जब संपूर्ण चंद्रमा बनता है पूर्णमासी, तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य प्रत्यक्ष होता है। तो ज्ञान सूर्य बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता, वो सूर्य जिसके लिए गीता में कहा है भगवान ने कि मैंने ये ज्ञान पहले पहले किसको दिया, सूर्य को दिया। है 2000 को ज्ञान मिला 36 में, 2036 में, 2036 में बाप और बच्चे को ज्ञान मिलेगा, फिर 108 की माला कब तैयार होगी? है राजधानी तभी तैयार होगी, ईश्वरीय राजधानी, जहाँ बाप के 108 बच्चे माला रूपी संगठन में पिरोए गए हों, वो 108 बच्चों का संगठन ही तैयार नहीं हुआ। संगठन की शुरुआत कब से होती है? अरे 40 साल पूरे होते हैं तो धक से राजधानी स्थापन होती है। कौन आता है, कौन प्रत्यक्ष होता है जो धक से राजधानी स्थापन कर देता है? है सुप्रीम सोल बाप, जगदम्बा, जो आत्मिक रूप में समझू जगदम्बा है। जगदम्बा के भी दो रूप, एक मूर्त रूप शरीर और शरीर को चलाने वाली आत्मा, समझो समझ, बुद्धि की देवी को समझ कहा जाता है जगदम्बा। कैसे जगदम्बा? जगत की अम्बा पहले या भारत माता पहले? भारत माता पहले, तो भारत माता जगदम्बा होनी चाहिए। जगदम्बा पहले, जगत बने 500 करोड़, तो 500 करोड़ पहले प्रत्यक्ष होते हैं, तो जगदम्बा कहाँ हुई? वास्तव में सारा जगत, सारे जगत के विदेश वो समझू सयाने हैं असली रूप में, या भारत समझू सयाना है,
क्यों? क्योंकि विदेशी बाप को पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाते और भारतवासी बाप को पहचान लेता है एवरलास्टिंग। तो भारत माता है क्या वास्तव में जगत जननी? भारत माता धरणी पहली कौन है? भारत माता। और जो भी जगत की धरणियां हैं, धर्मखंड हैं, बौद्ध धर्मखंड, क्रिश्चियन धर्मखंड, मुस्लिम धर्मखंड, वो बाद में आते हैं या पहले आते हैं? तो जगदम्बा का जो हम साकार रूप देखते हैं वो बाद का है, और जो आत्मिक रूप जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है वो पहले का है। इसलिए दोनों आत्माएं उनके संस्कार मिलकर के जब एक होते हैं महा मृत्यु के समय, तब महालक्ष्मी कहा जाता है। क्या राज्य में एक होती है बड़ी माँ और एक होती है लक्ष्मी माता, जिसको आज भी गृह लक्ष्मी कहते हैं। भले जो राजमाता होती है उसको ऊंची कुर्सी तो दी जाती है, लेकिन राजा के साथ दी जाती है या अलग दी जाती है? अलग दी जाती है। और राजा के साथ मिलकर के राज्य चलाने वाली राजलक्ष्मी कही जाती है। तो ये फाउंडेशन वहां से पड़ता है। क्या सात और बहू का? ओम शांति।